प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1966 शुक्रवार को तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि गीता पर भाषण करके और पहले ही पहले तुम बच्चों को समझाना है कि भगवान किसको कहा जाता है। गीता सुनाने वाला, ज्ञान सुनाने वाला, सहज राजयोग सिखलाने वाला यानी मनुष्य से देवता बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला, क्योंकि ये राजयोग है। नारायण जैसा विश्व महाराजन बनाने वाला योग है। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता था। देवता में और भगवान में अंतर होता है। कहां भगवान देवता बनाने वाला और कहां कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला। भगवान नरसिंह नारायण बनाने वाला और कृष्ण नारायण बनने वाला। रचयिता और रचना में फर्क तो होता है ना। राजयोग भी कौन सा है? भगवान का राजयोग। अभी भगवान कौन था? भगवान किसको कहा जाए? भाग्य बनाने वाला या भाग्यशाली? तो फिर ये समझाया जाता है कि बरोबर वो तो परमपिता गॉड फादर है। फादर बेहद का फादर माना सब का फादर, सब का पिता है। और सब का पिता हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा ब्राह्मणों का पिता है। विष्णु देवताओं का आदि है और शंकर देवों में देव महादेव कहा जाता है। देव ही तो है, महादेव है तो क्या हुआ? भगवान तो नहीं है। साथ ही 66 की वाणी का चौथा पेज। तो उन लोगों को पहले समझानी देनी पड़े ना कि भगवान कौन है। ये जो गीता में कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान वाच, तो क्या वो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण भगवान है? भगवान की उपाधि तो सूर्य से दी जाती है। कलाओं में संपूर्ण बनने वाला और बिखरने वाला चंद्रमा से नहीं। कहा भी जाता है कृष्ण चंद्र रामचंद्र, ये तो गिरती कलाओं वाले हो गए। भगवान तो कभी गिरती कला और उठती कला वाला नहीं बनता। इसीलिए तो कहते भी हैं, शास्त्रों में ही बोल दिया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो श्री कृष्ण भगवान वाच कैसे हो सकता? क्या वो साकार श्री कृष्ण भगवान है या निराकार भगवान है? तो फिर महिमा करनी पड़ती है। वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। चंगरी जी में ये भी है और सबका पिता क्रिएटर है, सबका रचयिता। तो जब सबका रचयिता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचयिता है, त्रिदेवों को भी रचते हैं। तो उन त्रिदेवों को भी देवता कहा जाता है। फिर आओ मनुष्य सृष्टि में, तो मनुष्य तो दैवी गुणों वाले भी होते हैं जिन्हें देवता कहा जाता है। उन दैवी गुणों वालों को भी तो भगवान नहीं कहा जाए? भगवान को तो शास्त्रों में भी कह दिया है गुणातीत, त्रिगुणातीत, सत्व रज तम, इन गुणों के बंधन में आने वाला नहीं है। क्योंकि दैवी गुणों वाले मनुष्य ये सतयुगी नई रचना है। ऊंचते ऊंच सबका रचयिता भगवान बाप की, तो जरूर जो नई रचना है उसको रचने वाले ने रचा होगा। कैसे रचा है सो हम बैठ करके समझाते हैं कि भगवान बोलते हैं मैं कैसे रचयिता हूं। जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा रचना करता हूं। अभी ब्रह्मा चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा सो भी तो गायन है कि बरोबर परमपिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं, तो रचना तो यही होनी चाहिए। ये सारी सृष्टि रचना है, तो प्रजापिता भी यहां ही होना चाहिए। ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में हो सकता है, प्रजापिता सूक्ष्म बतन में नहीं होना चाहिए। तो आते हैं फिर पतित दुनिया में, तो जरूर कोई पतित होंगे जिनका नाम ब्रह्मा गाया जाता है। ब्रह्मा कोई एक तो नहीं है ना, बहुतों के नाम है, गाया भी जाता है जो ब्रह्मा सो विष्णु। तो प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा। अभी वो प्रजापिता कौन है, इस बात की बाप बैठ करके समझाने देते हैं। समझाने देने वाला निराकार ज्योति बिंदु होगा या मुख से समझाने देने वाला होगा। बैठ समझाने देते हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो पतित होने के कारण अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। जैसे गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन के रथ में दिखाया है ना, शरीर को ही रथ कहा जाता है, शरीरम रथम विद्धि, शरीर रूपी रथ में आते हैं, बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूं, न मेरे जन्मों को जानते न अपने जन्मों को जानते। तो एक अर्जुन को नहीं कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, नहीं, वो है ही ब्रह्मा। ब्रह्मा के थ्रू हम स्थापना करते हैं। अभी थ्रू अर्जुन तो कहीं लिखा नहीं है, तो उनको कहें तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, नहीं, ये तो ब्रह्मा को कहेंगे ना, क्योंकि ब्रह्मा मुख कमल द्वारा समझाती है। तो यहां अर्जुन की तो कोई बात ही नहीं है, जो बैठ लड़ाई लड़े, ब्राह्मण तो लड़ते झगड़ते नहीं है। तो यहां तो ब्राह्मण चाहिए, और त्रिमूर्ति में भी कोई अर्जुन नहीं लगा हुआ है, त्रिमूर्ति में भी पहला देव ब्रह्मा लगा हुआ है। तो वो ब्रह्मा को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम पहले तो देवता थे, अब सो शूद्र बने हो, वो तुम्हारा पहला जन्म था सतयुग आदि में, अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। बहुत जन्म के अंत का अंत, सो भी तो पतित हुआ ना। बी क्यों लगा दिया? यहाँ ब्रह्मा के लिए बोला कि प्रजापिता ब्रह्मा के लिए भी लगा दिया। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का अंतिम जन्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म, तो पतित जन्म हुआ तो जरूर पतित के शरीर में प्रवेश करके उनका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं। क्योंकि वो निराकार परमपिता परमात्मा जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, क्योंकि फिर वो तो कन्वर्ट होते हैं ना। कन्वर्ट होते हैं तो नाम बदल देते हैं ना। कन्वर्ट हुआ, नया जन्म हुआ तो नया नाम ही पड़ेगा। तो बाप ने उनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। किनका है? किनका नाम? अरे उनका कह के दूर कर दिया, इनका नहीं बोला है। प्रजापिता का भी नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा रख दिया है। और फिर जो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ये क्लास बना करके उनको बैठ करके समझाते हैं। कौन सुनाते कौन है और समझाते कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, खुद भी सुनते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं। अभी वो है ज्ञान का सागर, तो उनसे ज्ञान गंगाएं चाहिए। तो ये धारणा किसने की? किसने प्रवेश किया? तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा में प्रवेश किया। फिर उनसे बैठ करके ये ज्ञान गंगाएं निकली। कौन कौन सी ज्ञान गंगाएं? जो प्रसिद्ध को पाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये नाम प्रसिद्ध है ना। उनको ये प्रसिद्धि वाले नाम कौन देता है? स्वयं ज्ञान का सागर देता है। ये तो मनुष्य की बात है ना। ज्ञान कोई जड़न दिया लेंगे क्या? ये तो चैतन्य ज्ञान ने दिए हैं। उन जड़ नदियों की तो कोई बात नहीं है ना। तो देखो भगवान बैठ करके समझाते हैं कि हे बच्चों, अब ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है, है? बहुत जन्म कितने? 84 जन कब हुए पूरे? इस जन्म में या पूर्व जन्म में? 84 जन इस जन्म में, पूर्व जन्म में ही 84 वजन, और ये है उसके अंत का जन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन। 84वां पतित जन्म भी है तुम्हारा, और पावन भी तुम इसी जन्म में बनते हो, तो ये तुम्हारा बहुत जन्म के अंत के भी अंत का जन्म है। और अभी ये झाड़ भी जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, भक्तिमार की भी आयु पूरी हुई है, नई दुनिया की आयु भी आकर के पूरी हुई है, क्योंकि अभी ये पुरानी बन गई है। अभी मैं आया हुआ हूँ, फिर से नई दुनिया स्थापन करने के लिए कल पहले मुआफिक आया हुआ। कौन सी नई दुनिया, कौन सा धर्म? ब्रह्मा द्वारा स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना नहीं होती है? है? देवताओं की दुनिया बनाने आता हूँ या सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया बना के चला जाता हूँ? ब्राह्मण तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे भी होते हैं, तो क्या ऐसे आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया बनाने आता हूँ? तो देखो, मैं तुमको बैठ करके फिर वही जिसको तुम गीता कहते हो, वही गीता। कौन सी वही? वही मैंने याद दिलाते हैं जिसको तुम यज्ञ के आदि में बैठ करके सुनते थे, समझते थे, वही गीता। सो मैं वही भगवान बैठ करके समझाता हूं, और वो गीता तो मनुष्यों की बनाई हुई है, उन मनुष्यों की गीता में तो पहले ही भूल कर दी। श्री कृष्ण भगवान वाच, फिर ये भागवत वगैरह वो सभी झूठी बातें हो जाती, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा की संतान, क्योंकि ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं ना। अभी ब्राह्मण तो अहिंसक, बाप बैठ करके लड़ाई सिखलाएंगे क्या? कौन सी लड़ाई है? अरे हिंसक लड़ाई बैठ करके सिखलाएंगे क्या? वो महात्माएं, धर्म पिताएं भी हिंसक लड़ाई नहीं सिखलाते। नहीं, बाप तो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, बाबा बैठ करके योग बल सिखलाते हैं। ये हिंसक लड़ाई की बात नहीं है, भोग बल की लड़ाई की बात नहीं है। भोग बल वाले दुख देते हैं या सुख देते हैं? दुख ही देते हैं। आदि में भी दुख है, मध्य में भी दुख है और अंत में भी दुखी बनाते हैं। ये योग बल की लड़ाई है। इंद्रियों को बस में करने की लड़ाई है, ये योग बल की बात है। तो कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ मेरे साथ क्यों है? क्योंकि जिसका संग करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो मैं तो सदा पाप मुक्त हूं कहते भी हैं। जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं, ये तो पक्का हो गया। तो जहां पाप है वहां बाप नहीं है, अर्थात ये माया की जो लड़ाई है इसमें भी जब बाप याद नहीं रहता है तो भोगी मनुष्य योग में न रहने के कारण इंद्रियों से दुख देते हैं या सुख देते हैं? हैं? दुख ही देते हैं। तो कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। मुख्य पाप कौन से विकार कराते हैं? काम और क्रोध। काम की आस पूरी नहीं होती है तो कामेश क्रोधेश, क्रोध में आ जाते हैं देह अहंकार के कारण। मेरे को याद करते करते इस याद की यात्रा से तुम मेरे को प्राप्त करेंगे और इस यात्रा से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। वर्तमान में भी विकर्म नहीं बनेंगे और पास्ट के भी जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि सतो प्रधान तुम्हारी आत्मा सो 84 जन्म भोगते भोगते शुरू से लेकर के सीढ़ी उतरते उतरते अभी पतित बन गई है। शुरू से ही नीचे गिरते हैं, सतयुग आदि से ही नीचे गिरते हैं कि द्वापर कलयुग में ही नीचे गिरते हैं? हैं? सतयुग आदि से ही कुछ न कुछ नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते इस युग को आयरन एज कहा जाता है, क्योंकि खाद पड़ गई। कौन सी खाद पड़ गई? निर्विकारी देव आत्मा द्वापर कलयुग में आती है या विकार में ढकलने वाली आत्मा द्वापर कलयुग में आती है? तो ये विकारों की खाद पड़ती है। तो अभी तुम्हारी खाद कैसे निकले? तुम पावन आत्माएं कैसे बनो? आत्मा का अभी काम है परमात्मा बाप को जो सर्वशक्तिमान है उनसे योग लगावे, उसको याद करे, जिसको ही भक्ति मार्ग में प्राचीन योग कहा जाता है। तो बाप को याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश होता जाएगा और विकर्म भस्म करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम पतित पावन को याद करते हो। तो पतित से पावन हो स्वर्ग में जाना है। 7 जनवरी 1966 की वाणी का 5वां पेज। अभी ऐसे तो नहीं है कि सागर से निकली हुई नदियों या पानी में स्नान करने से कोई पतित पावन पतित मनुष्य पावन दुनिया में चले जाते हैं। कोई गए क्या है? नदियों में हजारों वर्ष से स्नान करते आए, पतित से पावन तो कोई नहीं बने। तो जड़ नदियों की बात नहीं है, ये तो चैतन्य ज्ञान सागर है जिससे चैतन्य ज्ञान नदियां निकलती हैं। उनमें ज्ञान स्नान करने से तुम पतित से पावन बन जाते हो। नदियों में ही क्यों कहा, पोखरों में क्यों नहीं कहा है? गड्ढे गड़ीचियों में क्यों नहीं कहा है? हाँ, क्योंकि नदियां जो भी कचरा उनमें पड़ता है वो साफ सच्ची होने के कारण, अपना पूरा पोता मेल देने के कारण कचरा सारा कहाँ डाल लेती है? सागर में डाल देती है। तो ऐसी पावन नदियों में तुम चले जाते हो स्नान करने, जड़ नदियों की बात तो हो ही नहीं सकती है। पावन दुनिया में एक तो पवित्र बनना है, दूसरी पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि जो समझाते हैं सारी सृष्टि का समाचार वो भी तो सुनाना है ना। तो अभी ये सुनना है, सेकंड में जीवन मुक्ति जिसको कहा जाता है। तो देखो, एक तो तुम पाठशाला ले सकते हो, कहां भी भाषण कर सकते हो। दूसरा हम समझावे, ये जो गाया हुआ है एक सेकंड में जीवन मुक्ति, तो ये एक सेकंड में जीवन मुक्ति जीवन बंध से, अर्थात जीवन मुक्ति है ही सतयुग में, और ये जीवन बंध है कलयुग में। तो एक सेकंड में क्या एक को ही जीवन मुक्ति या अनेकों को नंबर वार मिलती है? बुद्धि तो कहती है कि कहते जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो और जो नंबर वार आएंगे कुछ सेकंड बाद ही आएंगे या एक साथ आएंगे? बाद में आएंगे तो सेकंड बढ़ जाएंगे या स्थिर रहेंगे? बढ़ जाएंगे। तो पहले नंबर का गायन हो जाता है। जनक माना क्या है? जन माने जनन करने वाला, पैदा करने वाला। का माना करने वाला? अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि को पैदा करने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? हैं? प्रजापिता, जिसे और धर्मों में एडम, आदम, आदिनाथ भी कहा जाता है। तो पहले नंबर का जो गायन हो जाता है उसके लिए गायन है, एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली। तो सोचने की बात है, भला खाली जनक मुक्ति धाम में जाकर क्या करेगा? है? अकेला मुक्ति धाम में रहेगा तो मजा आवेगा? जरूर, जनक तो राजा था और वहां उसकी प्रजा भी होगी। वो बहुत ही मनुष्य थे, तो जरूर वहां नई दुनिया में भी जनक आना चाहिए। जनक आना चाहिए नई दुनिया में, वो ही जनक है, या शरीर छोड़ करके नए जन्म में आना चाहिए? हैं? नए जन्म में आना चाहिए। तो नए जन्म में नया नाम होगा, तो जनक वहां राजा बनता है। जिनकी बच्ची सीता होती है, कोई एक तो नहीं सीखा होगा ना? वो तो बाप आकर के सर्व को सदगति या सर्व को जीवन मुक्ति देंगे। तो बाप कहते हैं योग और पढ़ाई से सबको जीवन मुक्ति देना, ये तो मेरा ही काम है। सबको माने किनको? हैं? सिर्फ बाप के जो बच्चे हैं उनको? बाप आत्मा है, तो जो बच्चे आत्मा बनते हैं पुरुषार्थ करके, सिर्फ उनको? उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है या सबको? अर्थात 500 करोड़ को भी? 500 करोड़ को भी? हाँ, कोई को एक जन्म के लिए और कोई को अनेक जन्मों के लिए भी। तो देखो, तुम समझाएंगे ना कि योग बल से मनुष्य बरहली बनते हैं, एवर हेल्दी माने एक जन्म के लिए या अनेक जन्मों के लिए? अनेक जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनते हैं और एवर निरोगी बनते हैं, क्योंकि आयु बड़ी हो जाती है। तो अभी ये योग की हॉस्पिटल अच्छी, या ये भोगियों की हॉस्पिटल अच्छी, जहां रोज ऑपरेशन कराए जाते हैं, कौन सी हॉस्पिटल अच्छी? जो भोगी मनुष्य होते हैं वो भोग को बढ़ाने वाले हॉस्पिटल खोलते हैं, और जो बाप के योगी बच्चे हैं वो ग्लोबल हॉस्पिटल खोलेंगे? खोलेंगे? नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहां तो भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं। कोई दाढ़ी मूछ वाला भगवान नहीं। भगवान किसको कहा जाता है? है निराकार को कहा जाता है या साकार मनुष्य को कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। जो निराकारी बिंदु रूप स्टेज में टिकने वाला है, निसंकल्प अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप, योग की जो इतनी महिमा है, सभी योग आश्रम खोल करके बैठते हैं और महिमा करते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की। अभी प्राचीन योग से क्या हुआ था? मनुष्य तो नहीं जानते हैं, उस प्राचीन योग से भारत अवरहली सचयुग के लिए बिल्कुल ही निरोगी पद पाया था। किसने पहले किसने पाया? भारत ने। अभी भारत योगी है कि भोगी है कि निरोगी है? निरोगी ही कहेंगे सतयुग में, और रोगी कहेंगे हैं कलयुग में। अभी ये जो योग यहां सिखलाते हैं उसमें तो कोई अवरहली बन नहीं सकते हैं, हैं? अभी अभी माने कभी है 66 की बात। अच्छा, और 2015 की बात नहीं है? हैं? अभी कोई योग सीख करके एवर हेल्दी बन रहा है? हैं? कि मनसा के और शरीर के रोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब अभी कलयुग की घोर अंधियारी आत पूरी नहीं हुई है, क्योंकि भगवान शिव के लिए ही गायन है शिव जयंती। कब है? महाशिवरात्रि। ऐसी घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि जहां 500-700 करोड़ मनुष्यों में से एक ही बचता है, जिसमें भगवान बाप मुकरर रूप से प्रवेश करते हैं, बाकी सब घोर अंधेरी रात में डूब जाते हैं। तो जब तक घोर अंधेरी रात है तो बराबर कलयुग है या सतयुग है? कलयुग है। फिर एक सेकंड में सूर्योदय होता है, दूसरी ओर चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो बाप ने क्या सिखलाया था? कौन से बाप ने, निराकार बाप ने क्या सिखलाया था? बरोबार योग सिखलाया था। प्राचीन भारत का योग मशहूर है, वर्तमान भारत का राजयोग मशहूर नहीं है। उस प्राचीन राजयोग से याद से हम एवर हेल्दी सतयुग के लिए बने हैं, क्योंकि नई दुनिया में सतयुग में एकदम बड़ी आयु थी, अकाले मृत्यु थी ही नहीं। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है, हैं? जो योग सिखलाने वाले बुढ़िया कहे गए उनका ही क्या हो गया, हैं? अकाले मौत हो गई। वहां तो अकाले मौत थी ही नहीं। तो तुम बच्चों को वहां जा करके ऐसी बातों से समझाना कि प्राचीन योग क्यों नामी ग्रामी है, क्योंकि खुद भगवान ने आकर के सिखलाया था। क्या कहा? अभी कौन सिखला रहा है, है? और भगवान खुद आकर के कब सिखलाता है, संगम में भी कब? संगम तो 1936 में भी था, 1976 में भी था, अभी भी संगम है। क्या पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष है, हैं? या जिनको प्रत्यक्ष होता है, आज प्रत्यक्ष होता है और कल, कल क्या होता है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं या निश्चय बुद्धि बनते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कहें या गुप्त कहें, हैं? गुप्त ही कहेंगे। तो खुद भगवान ने आकर के कब सिखलाया, संगम युग में भी कब सिखलाया? अरे हैं? 76 में सिखलाया। एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। 76 से लेकर के अब तक किसी को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली क्या, हैं? अरे भगवान सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना, हैं? कि भगवान भी नंबरवार हैं। तो योग से तुम सदैव निकोरो की बनेंगे, सदैव हेल्दी बनेंगे। और फिर ये जो सुदर्शन चक्र का ज्ञान है, जो ये विष्णु को दिया गया है, तो विष्णु के हाथ में क्या दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र। अभी अभी माने कभी, हैं? अभी माने कभी, संगम युग में अभी जिसको दिया है सुदर्शन चक्र, जिसकी बुद्धि में आत्मा के अनेक जन्मों का चक्र घूमता है, उसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी विष्णु। कोई वो चक्र तो नहीं है जिसे कोई किसी का गला काटा हो, हैं? गला काटते हुए क्यों दिखाते हैं भगवान को? हाँ, जो देह अभिमान है, देह का दुम्ब है, वो देह का दुम्ब सुदर्शन चक्र से काट करके अलग कर दिया जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। यहां तो लिखा ही हुआ है सुदर्शन चक्रधारी स्व को अर्थात अपनी आत्मा को इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है स्वदर्शन चक्र। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र को देखना, चार युगों के चक्र में कि मेरे कहां कहां कैसे कैसे जन्म होते हैं। अब बताओ कि सुदर्शन चक्र नाम क्यों धरा है, कोई अर्थ तो होगा ना। स्वमाना ही आत्मा का दर्शन, किसी चीज का दर्शन। अरे आत्मा का दर्शन, एम ऑब्जेक्ट का दर्शन, यानी परमात्मा का दर्शन और फिर उनकी रचना का दर्शन। कि उनकी रचना चक्र में कैसे फिरती है, जिस रचना के चक्र में फिरने को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं सुनाते हैं, कोई को भी पूछो कि रचयिता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान सुनाओ तो बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं है। तो जब तक भगवान ना समझाए तब तक हम कैसे समझें। तो समझाने का काम भी किसका है, स्वयं भगवान का है। ऐसे नहीं कि भगवान ज्ञान सुना के चले जाते। जैसे ब्रह्मा के तन में आया, ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, वाणी सुना के चला गया, नहीं उस वेद वाणी का अर्थ भी तो पता चले ना। तो एक तो बाप कहते हैं कि तुमको डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी धर्म वालों के कोई भी आश्रम क्यों न हो, जो जो भी आश्रम है, जो जो भी कोई के हाल बने हुए हैं, तो वहां तुम जाकर के कहते हो कि हम गीता पर समझाना चाहते हैं। हम मुख्य बात समझाएंगे कि गीता का भगवान कौन था, क्या गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण था। यह गीता का भगवान भगवान था, क्योंकि भगवान तो कलाओं में नहीं फिरता है, भगवान को तो कलातीत कहा जाता है। जैसे सूर्य कलाओं से परे है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है, सारी दुनिया गॉड फादर कहती है, यानी क्रिएटर पिता कहती है। अभी कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकेंगे, कृष्ण द्वापर के अंत में आया तो क्या क्रिएट किया, पापी कलयुग है? भगवान आकर के पापी कलयुग स्थापन करेगा, फिर भगवान को कौन याद करेगा? अभी कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकेंगे, भगवान तो एक है, ऐसे नहीं राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, विष्णु भी भगवान। ब्रह्म समाजी कहेंगे ब्रह्मा भी भगवान। तो कोई भी आर्गू करे तो बोले, हम आए हैं गीता पर समझाने के लिए, और ये समझाने कि गीता का भगवान कौन था। देवता कृष्ण था, 16 कला संपूर्ण या कलातीत भगवान था, क्योंकि सारी दुनिया कृष्ण को तो भगवान कह भी नहीं सकेगी। क्रिश्चियन कृष्ण को भगवान कहते हैं, इस्लामी मुस्लिम कृष्ण को भगवान कहते हैं, गॉडफादर अल्लाह मियां कहते हैं, कह ही नहीं सकते। भगवान को गॉडफादर तो सभी कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी, जो इन आंखों से देखेगा, जो इन कानों से सन्मुख आकर सुनेगा, क्या कहेगा? है हमारा बाप भगवान गॉडफादर आया हुआ है। तो तुम कह सकते हो हम उस गॉडफादर के ऊपर गीता का ज्ञान समझाने आए हैं। उनको समझाना होता है कि ये मुख्य बात है, जबकि भगवान से जीवन मुक्ति मिली थी तो ये जो गीता पढ़ते आते हैं, उस गीता पढ़ने से मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि गीता की समझाने अनेक मनुष्यों ने गीता के इंटरप्रिटेशन करके दी है, और उनकी समझानी में बहुत वितंडावाद है, अनेक बातों के झगड़े हैं, जबकि भगवान तो एक है, समझाने वाला सुप्रीम टीचर एक है, एक ही गीता का ज्ञान देने वाला है। क्योंकि सब जीवन बंद हो जाए तो उसको भगवान कहेंगे, कहेंगे भगवान सर्वशक्तिवान है। इतने मनुष्य गुरु आए, इतने धर्म पिताएं आए, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति, तो क्या अपनी भी जीवन मुक्ति नहीं कर सके? स्वयं भी इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते, ये सब तो गीता सुनते हैं ना। तो फिर क्या फर्क है मनुष्य की गीता सुनाने में और भगवान की गीता सुनाने में? ओम शांति।